ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। हमारे बीच आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी पंचशीला दीदी जी उपस्थित हैं। हम सभी जोरदार तालियों से आदरणीय दीदी जी का स्वागत करते हैं। दीदी जी से आपको अवगत करा दें, आदरणीय दीदी जी सन 1970 में ज्ञान में आए और करीबन 48 वर्षों से आप यज्ञ में समर्पित रूप से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपने मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों पर बहुत ही सुंदर तरीके से सेवाएं दी हैं। भोपाल में आपने विशेष वीआईपी सेवाएं भी की हैं और वर्तमान समय मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में आप 23 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। आप महिला विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। गांव-गांव की विशेष सेवाओं में दीदी को बहुत इंटरेस्ट है और साथ ही नए-नए तरीके खोजती रहती हैं कि गांव-गांव में किस प्रकार से बाबा का परिचय दिया जाए। जो बाबा मुरली में कहा करते हैं कि जन-जन को संदेश देना है, तो दीदी को इन चीजों में बड़ी ही रुचि है। गांव-गांव में जाकर बहुत ही सुंदर तरीके से दीदी जी सेवाएं करती हैं। अभी हम दीदी जी के अनुभव युक्त क्लास यहां पर सुनेंगे। एक बार फिर से दीदी जी का हार्दिक स्वागत है।
ओम शांति। ओम शांति। पूरी आवाज नहीं आई, सभी भोजन करके आए ना। ओम शांति। अब आवाज निकली ना। बाप दादा के नैनों के नूर, विश्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले, कर्मों के सच्चे ब्राह्मण, आने वाली भविष्य नई दुनिया के निर्माता, बाबा के आंखों के तारे, बाबा की आशाओं के दीपक, बाबा के सच्चे सच्चे स्नेही, सदैव सहयोगी और सदा ही बाबा के मददगार हम सभी बाबा के बच्चे ब्रह्मा वत्स, ब्रह्मा बाप की भुजाएं बैठे हैं। हमें बहुत बहुत अपने ऊपर नाज होना चाहिए कि स्वयं विश्व रचियता भगवान ने हमें इस योग्य समझा और हमें इतने बेहद विशाल कार्य के निमित्त बनाया कि आप बच्चे ही नए विश्व के निर्माता हैं। और यह निश्चित है कि जिनको भगवान ने जिम्मेवारी दी है, उनमें भगवान ने जरूर कोई ना कोई योग्यता अथवा विशेषता, हुनर या कला देखी है, तभी उसने हमें इस कार्य के निमित्त बनाया है। सारे दिन की दिनचर्या में हम स्वयं ही स्वयं की पीठ ठोंकें और कहें कि वाह रे मैं, जो मुझे भगवान ने इस कार्य को करने के योग्य समझा। नहीं तो अगर हम देखें तो हर एक अपने आप को देखे, अपने पिछले जीवन को देखे कि हम कहां थे, क्या कर रहे थे, किन स्थितियों में थे, कितने भूले हुए थे, कितने भटके हुए थे, कितना ना अपने आप से परेशान, निराश, हताश और उदास थे। लेकिन जिस दिन से हम बाबा के बने हैं, हमने बाबा को पहचाना है, सही अर्थों में उस परम सत्य को हमने जाना है, उस दिन से हमारा यह जीवन सत्यता की तरफ प्रेरित होकर उस परम सत्य को प्राप्त करके और जीवन के संपूर्ण लक्ष्य की तरफ बढ़ चला है। सभी अनुभव करते होंगे कि जिस घड़ी या जिस दिन हमें बाबा मिला, हमने बाबा को पहचाना और बाबा ने हमको पहचाना। ऐसा नहीं है कि केवल हमने बाबा को पहचाना है, नहीं, बाबा ने भी आपको पहचाना है कि आप वही मेरे पुराने भूले हुए बच्चे हो जिन्होंने मुझे मदद करके और नए विश्व के निर्माण के कार्य में सहयोग दिया था। तो बाबा भी बच्चों को देखकर खुश होता है और बच्चे भी बाबा को देखकर बहुत बहुत खुश होते हैं। होते हैं ना खुश, वो खुशी की अनुभूति हर एक आत्मा की क्या है, अपनी अपनी है, एक जैसी नहीं है। जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा था कि सभी बाबा शब्द बोलते हैं लेकिन हर एक का बोलने का तरीका और हर एक का अनुभव कैसा है, अलग अलग है। कोई बड़े प्यार से बोलता है, कोई प्राप्ति के नशे से बोलता है, कोई हमें भटका हुआ मार्ग, भटका हुआ रास्ता या भूले हुए को एक समझ मिल गई, भूले हुए को रास्ता मिल गया, उस बड़े प्यार से और बड़े ही गहराई से वो शब्द बोलता है बाबा। तो इस बाबा शब्द के अंदर बहुत ही भिन्नता समाई हुई है। शब्द भले ही एक है लेकिन हर एक आत्मा के अनुभव की गहराई अपनी अपनी है। हम अगर देखें तो जिस घड़ी हम यहां आए उस घड़ी का अपना अनुभव है। जैसे ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि रास्ता चलते ब्राह्मण फंस गया, ऐसे हर एक आत्मा का अपना अनुभव है। कोई अपने मार्ग पर सीधा चला जा रहा था, कोई थोड़ा उलझनों में था, कोई जीवन से निराश हो चुका था, कोई जीवन को समाप्त करने की कगार पर पहुंच गया था और कोई उस सत्य की खोज में जगह जगह भटक रहा था, पर अंदर एक निश्चय था कि वह कभी ना कभी मिलेगा जरूर। और वही निश्चय कहीं ना कहीं हमें ईश्वरीय प्राप्ति का अनुभव करा देता है। कोई ने बूढ़े बुजुर्ग के रूप में उसको स्वप्न में देखा, कोई ने उसके सहारे का अनुभव किया, कोई ने अनुभव किया कि मैं मार्ग भटक गया था, मुझे सही मार्ग दिखा दिया, किसी ने अनुभव किया कि मैं अनेक प्रकार के विषयों में, अनेक प्रकार के व्यसनों में उलझ गया था, फंस गया था या उस कारण से निराश हो गया था, लेकिन उस भगवान के सत्य परिचय से मेरे अंदर आशा की एक किरण जग गई और मुझे जीने का एक सहारा मिल गया, जीवन जीने का एक आसरा मिल गया और उस सत्य को पाकर वह आगे बढ़ चला और हम सभी वो खुश नसीब आत्माएं यहां बैठी हुई हैं जिन्हें स्वयं भगवान मिल गया है ना सभी को। या सोच रहे मिलना है, अभी आएगा बाबा मिलेगा, कौन कौन समझते मिलेगा, बाबा मिल गया है, लेकिन अभी क्या करते हैं, पुनः पुनः उससे मिलन मनाने की आशा तीव्र होती है और वही आशा वही प्यार हमें खींच कर पुनः पुनः बाबा के इस पवित्र वरदान भूमि में हर प्रकार से हमें उस अनुभूति के स्थान पर ले आता है जहां आत्मा आकर क्या महसूस करती है कि मुझे अपना भूला हुआ घर मिल गया, मुझे अपना भूला हुआ बाप मिल गया, मुझे अपना बिछड़ा हुआ परिवार मिल गया। ऐसा अनुभव करते हैं ना हम सभी। तो जब हमें अपना ये परिवार मिला तो इस परिवार के मिलने की भी हमारे अंदर क्या है, बहुत खुशी है। जब हमें बाबा मिला, परिवार मिला, भगवान से सर्व प्राप्तियों का वरदान मिला, रोज स्वयं भगवान हमें जगाता है, हमें उठाता है, हमें मुरली सुनाता है, हर कर्म में हमारा साथी बन हमारा साथ निभाता है और हर कर्म में हमारी मदद करता है और रोज हमें सुलाता भी है, हर प्रकार से हमें कठिनाइयों से, माया के वार से, अनेक परेशानियों से, अनेक कारणों से और अनेकानेक प्रकार के दुख और दर्दों से रोज हमें क्या करता है, मुक्त करता है। तो आप सोचिए कि हम आत्माएं कितनी ना पदमा पदम भाग्यशाली आत्माएं हो गईं, जिनको स्वयं भगवान रोज उठाता और पढ़ाता है, और पढ़ाता भी कितनी सहज भाषा में है, कितने सरल शब्दों में है, कहीं कोई शब्दों का जाल नहीं है, कितनी सहज पढ़ाई बाबा ने हमको पढ़ाई है और हमारी पढ़ाई दो शब्दों में बाबा ने क्लियर कर दी। क्या क्लियर किया, अपने को आत्मा समझो और परमात्मा पिता को याद करो, हर सेकंड समझो बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, मोबाइल मेरे साथ नहीं है। अभी क्या हो गया है, वर्तमान समय हम देखते हैं कि बाबा साथी हमको बीच बीच में थोड़ा क्या हो जाता है, विस्मृत हो जाता है और हमारा क्या साथी बन जाता है, ये मोबाइल साथी बन जाता है और उस घड़ी क्या होता है, उसमें हम इतना उलझ जाते हैं, इतना हम उसमें उसके प्रभाव में आ जाते हैं कि कई बार क्या करते हैं, हम बाबा की कब कब मुरली भी हम मिस कर देते हैं, कहते हैं मोबाइल में पढ़ ली ना हमने मुरली, क्या होता है, हमने घर में पढ़ ली ठीक है, लेकिन जिन कदमों से चल करके हम बाबा के स्थान पर पहुंचते थे, वो कदम कदम में पदम की कमाई और बाबा की याद की कमाई वो हमारी क्या हो जाती है, वो हमारी मिस हो जाती है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अगर कृष्ण की दुनिया में जाना है तो किसी भी प्रकार के आकर्षण में नहीं आना है, अगर कोई भी प्रकार के आकर्षण में आप आएंगे तो क्या होगा, कृष्ण की दुनिया में नहीं जा पाएंगे। इसलिए वर्तमान समय समय जो हमको इशारा दे रहा है, बाबा जो हमको इशारा दे रहा है, हम उससे कैच करें। बाबा चाहता है कितने समय से जो पढ़ाई मैंने पढ़ाई है, अभी हमें उस पढ़ाई का बाबा को रिटर्न देना है, बाबा को रिटर्न देना है। बाबा ने मुरली में कहा भी है कि अभी आपकी क्या है, रिटर्न जर्नी है, पुनः अभी हमें लौटना है, फिर हमें वापस जाना है। तो जब हमको जाना है तो हमें भी कौन सा पुरुषार्थ करना है और किस पुरुषार्थ पर ध्यान देना है, ये हमको अंडरलाइन करना है कि कहीं भी किसी भी प्रकार से हमारा अपने पुरुषार्थ के प्रति अटेंशन कम ना हो, हमारा उमंग, हमारा उत्साह। जब हम बाबा के बच्चे बने, जब हमने बाबा को पहचाना, जब हमने बाबा को जाना, उस समय जो उमंग, उत्साह, लगन और हमारी स्थिति थी, क्या आज वो है? चेक करो, है? आप अनुभव करेंगे कि पहले जैसी जो लगन है, ललक है, जो आकर्षण है, जो बाबा के प्रति हम जो भागते थे, आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई समस्याओं में, कोई ना कोई कारणों में, कोई ना कोई प्रकार की उलझन में कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं। और जब रुक जाते हैं तो पुरुषार्थ हमारा कैसा हो जाता है? पुरुषार्थ हमारा ढीला हो जाता है। इसलिए हमें इस बात को सदैव स्मृति में रखना चाहिए कि हम वो आत्माएं हैं जिनने भगवान को चुना, बल्कि ऐसा कहें जिन्हें भगवान ने चुना है। तो जरूर चुना है, तो भगवान का चुनाव तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। दुनिया में मनुष्य आत्माएं मनुष्य आत्माओं को चुनती हैं, तो वह भी देखती हैं कि जब ये सीट पर बैठेगा तो ये हमारा कार्य करेगा या नहीं करेगा, इसे हम चुने या ना चुने। तो भगवान ने चुना तो भगवान का चुनाव तो गलत हो ही नहीं सकता है। हो सकता है कभी गलत? नहीं हो सकता। तो भगवान ने जब हमको चुना है तो हमें उस कार्य के अर्थ सदैव अपने आप को तत्पर रखना चाहिए, उस कार्य के अर्थ हमें एकदम खड़े रहना चाहिए जिस कार्य अर्थ उसने हमें चुना है। जैसे स्थूल रीति से आप सभी अनुभव करते हैं कि जब किसी कार्य के लिए किसी स्थान से हम किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हमारी बुद्धि में क्या रहता है, मैं इस स्थान पर क्यों आई हूँ या क्यों आया हूँ?
But
तो हम सभी सुन रहे थे कि जब किसी कार्य के अर्थ व्यक्ति किसी स्थान पर जाता है तो उसको स्मृति में रहता है कि मैं इस स्थान पर इस कार्य के अर्थ आया हूं, और वह क्या कोशिश करता है कि जिस कार्य के लिए हम आए हैं हमें सबसे पहले उस कार्य को पूरा करके ही यहां से जाना है। तो हम सभी बाबा के बच्चे यहां किस लिए आए हैं, बाबा के क्यों बने हैं, बाबा से मिलन मनाने के लिए, बाबा का कार्य पूरा करने के लिए और विश्व को नई दिशा, उन्हें शक्ति और शांति अर्पित करने के लिए, क्योंकि वर्तमान समय बाबा हम बच्चों को यही इशारा दे रहा है कि बच्चे अभी क्या करना है। अभी इस लास्ट के समय में जबकि बाबा का अव्यक्त पार्ट भी हम देख रहे हैं पूरा हो रहा है, तो ऐसे समय में हम सभी को क्या करना है। हम सभी को दिन रात एक करके सभी को तपस्या करनी है, क्योंकि इस तपस्या के अर्थ बाबा ने हमको निमित्त बनाया है, और हमारी यह तपस्या ही विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्नता की ओर ले जाएगी। इसलिए हमको इस बात को ध्यान में रखना है कि हम कौन सी आत्माएं हैं। हम वो भगवान की चुनी हुई आत्माएं हैं, वो महावीर आत्माएं हैं, जिस पर एक बहुत अच्छी बात, एक वाक्य मुझे याद आता है। कहते एक बार नारद जी गए तो भगवान जी कुछ पत्री पोतरा पे कुछ लिख रहे थे। जब वो कुछ लिखा पढ़ी कर रहे थे तो नारद जी ने पूछा, भगवान आप क्या लिख रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं उनकी लिस्ट बना रहा हूं जो मुझे याद करते हैं। तो कहा मेरा नाम देखो, तो कहा तुम्हारा नाम तो सबसे ऊपर है, पहले नंबर में। तो नारद जी बहुत खुश हो गए कि अरे वाह, मेरा नाम सबसे पहले। गए दौड़े दौड़े हनुमान जी के पास कि देखा मेरा नाम सबसे पहले है। फिर दूसरे दिन फिर पहुंचे भगवान के पास, तब भी कुछ लिखा पढ़ी कर रहे थे। तो कहा आज क्या कर रहे हैं? कहते आज मैं उनका नाम लिख रहा हूं जिनको भगवान याद करता है। तो देखा उसमें सबसे ऊपर नाम हनुमान जी का था। तो आप कौन है? आप सभी कौन है? बाबा के हनुमान बच्चे हैं जिनको स्वयं भगवान याद करता है ना, जिनको भगवान स्वयं याद करता है। तो कई बार बच्चे पूछते ना, बाबा वतन में बैठकर क्या करते रहते हैं, बाबा क्या करते हैं? तो बाबा ने एक मुरली में कहा था, बाबा क्या करता, बच्चों को याद करता रहता है, बच्चों के गुणों की माला जपता रहता है बाबा। तो आप सोचो आप कितने विशेष में विशेष हैं, है ना, सभी बाबा के विशेष में विशेष बच्चे जिनकी माला स्वयं भगवान बैठकर जपता है। और कौन सी माला? गुण माला। जो बाबा ने कहा कि ये मेरा बच्चा बहुत सर्विसेबल है, ये बच्चा मेरा बहुत मीठा है, ये बच्चा मेरा बहुत आज्ञाकारी है, ये बच्चा फरमान बरदार है, ये हमेशा सेवा में तत्पर है, ये बच्चा कभी भी किसी भी सेवा को ना कहने वाला नहीं है, ये बच्चा मेरा सदैव खुशनुमा है। तो बाबा भी बच्चों के गुणों की माला का जाप करता रहता है। तो हमको भी क्या करना है? बाबा जिन गुणों की माला का जाप करता है हमें स्वयं को उस अनुसार ढालना है, अर्थात स्वयं को ऐसा योग्य और ऐसा लायक बनाना है। तो सभी ये दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि कुछ भी हो, माया कैसे भी विभिन्न रूपों से हमारे सामने आए, किसी भी प्रकार से हमें हराने की कोशिश करे, हमें बहकावे में लाए, अनेक प्रकार के प्रलोभन भी हमको दे, नाम मान शान की तरफ भी हमको खींचे, सुख साधनों की अंबार हमारे सामने हो, कोई खूब हमारी प्रशंसा या हमारी महिमा करे, तो भी हमें उसके प्रभाव में नहीं आना है, बल्कि हमें सदैव याद रखना है कि मैं बाबा का चुना हुआ सेवाधारी बच्चा हूं। केवल ऐसा नहीं कि हमने केवल पट्टा डाल लिया तो हम सेवाधारी हो गए, नहीं, बाबा कहता सेवाधारी माना जिन्होंने मन चित्त में सेवा करने का संकल्प धारण कर रखा है, स्वप्न में भी अगर कोई पूछे ना कौन हो, तो पट से मुख से क्या निकले, हम सेवाधारी हैं। हैं सभी सेवाधारी हैं ना, ऐसा नहीं कि जो आए हैं वो ही सेवाधारी, जिनका टर्न है वो सेवाधारी हैं, लेकिन हम सभी बाबा के बच्चे सेवाधारी हैं, क्योंकि हम सब ने विश्व की सेवा करने का संकल्प धारण किया ही है, सबने एक संकल्प तो धारण किया ही है ना। तो ऐसे हम बाबा के बच्चों को बाबा के द्वारा की गई सेवा का अभी रिटर्न देना है, और उसके लिए बाबा कहते बच्चे अभी आप तपस्या करो। जितना जितना आप तपस्या करेंगे, और तपस्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी सुख है साधन है, क्योंकि आने वाले समय में ना तो हमें साधन मिलने वाले हैं, ना सुविधाएं मिलने वाली हैं, और ना अनेकानेक प्रकार से समय हमारे अनुसार मिलने वाला है, बल्कि और ही विपरीत स्वरूप हमारे सामने आने वाला है। लेकिन हमारा ये लक्ष्य पक्का हो, हमारे दिल का ये पक्का वायदा हो कि कुछ भी हो, हम बाबा का हाथ और बाबा का साथ, बाबा का हाथ माना बाबा का, बाबा से हमारी श्रीमत पर चलने का वायदा, बाबा का हाथ श्रीमत है और बाबा का साथ है मन और बुद्धि की बाबा में एकाग्रता, हमारी मन बुद्धि में एक बाबा बाबा और बाबा हो, तो साथ सदैव हम बुद्धि से बाबा का करें, और सारे दिन की दिनचर्या में हम बाबा के श्रीमत रूपी हाथ को पकड़ करके रखें। ऐसा नहीं कि हमारा कोई मतलब हुआ या कहीं हमको प्राप्ति हुई, स्वार्थ हुआ, तो हमने श्रीमत मान ली, और जब देखा नहीं प्राप्ति नहीं है, कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा, तो कहा फिर हाँ थोड़ी देर बाद देखेंगे या फिर बाद में देखेंगे, तो कई क्या करते हैं श्रीमत को भी आगे पीछे कर देते हैं, पहले फिर अपना कार्य अपना स्वार्थ देखते हैं। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे नहीं, सदैव बाबा का श्रीमत रूपी हाथ हम पकड़ करके रखें। तो ऐसा हमें सारे दिन की दिनचर्या में विशेष अटेंशन रखना है कि मुझ आत्मा को अब इस लास्ट समय में, जबकि चारों ही तरफ लोग क्या चाह रहे हैं, चारों तरफ अगर हम देखें तो लोग क्या महसूस कर रहे हैं, अशांति महसूस कर रहे हैं, शक्तिहीन अपने आप को महसूस कर रहे हैं, हर प्रकार से अनेक प्रकार के बंधनों में अपने को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, और अनेक प्रकार के बोझों से बोझिल महसूस कर रहे हैं, और दिनों दिन अनेक प्रकार की जिम्मेवारियां, गवर्नमेंट के कार्य व्यापार कार्य व्यवहार का बोझ, और नई नई जिम्मेवारियां और कार्यों की जिम्मेवारियां व्यक्ति के ऊपर बढ़ती जा रही हैं, और इस कारण से व्यक्ति बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा है, बोझिल हो रहा है, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से अपने जीवन में वह निराश और हतोत्साहित भी होता जा रहा है। तो ऐसे समय पर हमारा कार्य और ज्यादा बढ़ जाता है, क्यों, हमें क्या करना है, हमें सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति देनी है, सारी विश्व की आत्माओं को शांति के प्रकंपन देने हैं, हिम्मतहीन आत्माओं को हमें हिम्मत का कदम देना है, भटकी हुई आत्माओं को हमें उनकी भटकन दूर करके उनको सही मार्ग प्रशस्त करना है। आज ये कार्य और ये जिम्मेवारी हमारी बहुत बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ नहीं होगा तो क्या होगा, आप अपनी जिम्मेवारी को भूल जाएंगे या हल्के हो जाएंगे, और हल्के होकर क्या करते हैं, अलबेलेपन में आकर के और आलस्य के वशीभूत हो जाते हैं, फिर क्या मन में आता है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, हो ही जाएगा, पहुंच जाएंगे, अभी कौन पहुंचा है, अभी तो सभी ऐसे जैसे ऐसे ही हैं, फिर भी हम तो सबसे ठीक हैं, हमारा पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा है, तो अपने आप में क्या हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। बाबा संतुष्ट हो ना हो, लेकिन आप क्या करते हैं, आप अपने आप से संतुष्ट हो जाते हैं। निमित्त आत्माएं संतुष्ट हो ना हो, लेकिन हम हमारा जितना पुरुषार्थ चल रहा है ना, हम जितना कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा है। हम अपने आप को सर्टिफिकेट दे देते हैं। पर बाबा क्या कह रहा है, अभी आपको बाबा से सर्टिफिकेट लेना है। तीन सर्टिफिकेट लेने ना हम सभी को, प्रभु पसंद का, लोक पसंद का और स्वयं पसंद का। ये तीनों सर्टिफिकेट लेने के लिए हम सभी को दिन रात पुरुषार्थ करना है, और विशेष रूप में वर्तमान समय के अनुसार। बाबा कहता बच्चे अभी इन तीन बातों को अंडरलाइन करो। सबसे पहला हमें जो पुरुषार्थ करना है, वह सारे दिन की दिनचर्या में आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, जिसका प्रैक्टिकल दैनिक चर्या में स्वरूप है आत्मिक दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि हमारी रहे। पहला पुरुषार्थ हमारा यह हो, यह अभ्यास हमारा बराबर चलता रहे। दूसरा बाबा कहता है कि ब्राह्मण जीवन की जो मर्यादाएं हैं, चाहे वह अमृत बेला उठना है, रोजाना बाबा के महावाक्य सुनना है, सारे दिन की दिनचर्या में कर्म योगी बनकर कर्म व्यवहार में आते बाबा को याद करने का अभ्यास करना है, अथवा भाई भाई की दृष्टि रखनी है, इस अभ्यास को हमें मजबूत करना है। तीसरा बाबा हम बच्चों को सदैव कहते हैं कि बच्चे सारे दिन की दिनचर्या में पुरुषार्थ करो, सुख देने का और सुख लेने का, क्योंकि ये मूल अभ्यास है। सारे दिन की दिनचर्या में इस अभ्यास को हम चेक करें, मनसा के द्वारा, वाचा के द्वारा, कर्मणा के द्वारा, तीनों प्रकार से हमें सुख देना है। और पहला है मनसा के द्वारा सुख, और मनसा से सुख देने के लिए मनसा को शक्तिशाली बनाना है, मनसा को एकाग्र करना है, मनसा पॉजिटिव बनानी है, मन को शक्तिशाली बनाना है, मन को सही दिशा देनी है, मन को सही मंत्रणा देनी है, मन को हमें प्रभु में एकाग्र करना है। जब हमारा ये अभ्यास होगा तब मनसा के द्वारा हम विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति के प्रकंपन दे सकेंगे, क्योंकि वर्तमान समय मनुष्य आत्माएं मनसा से ही कमजोर हैं। बाबा ने कहा ना कि उनको ज्ञान में चलने की जो टांग है ना, वो भी आपको देनी पड़ेगी। अभी इतनी भी ताकत नहीं आने वाली आत्माओं में। अब जो आत्माएं बाबा के बच्चे बन रहे हैं, आज उनमें इतनी ताकत नहीं कि अपनी टांगों से वो चल सकें। उनको हिम्मत, उमंग, उल्लास, खुशी और हर प्रकार से साथ के सहयोग की मदद हम ब्राह्मण बच्चों को देना है। तो ये हमारी बहुत बड़ी सेवा है। इन सेवाओं में दिन रात हमें लगना है। चौथा बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे अभी अपनी दैनिक चर्या में देखो कि सारे दिन में आप अंतर्मुखी स्थिति में कितना समय रहते हैं, अंतर्मुखता का अभ्यास कितना है, अंतर यात्रा कितनी करते हैं, या बाहर की यात्राओं की थकान को दूर करने, बाहरी बातों के प्रभाव में सुख और दुख में लहराने, या बाहरी बातों के आकर्षण में आकर्षित होकर के आप उसमें ही चलते रहते हैं, या उससे अपने आप को मुक्त कर आप आगे बढ़ रहे हैं। यह भी प्रैक्टिकल रूप में हमें चेक करना है कि हमारी अंतर्मुखता की यात्रा कैसी है। हम बाह्यमुखी जीवन में जी रहे हैं, बाहरी दुनिया में बोलना चालना, एक दूसरे से संसार के समाचार लेना या दुनियावी समाचार में इंटरेस्ट लेना, अगर ये सभी है तो वाणी हमारी किस में जाएगी? फिर बाबा की सेवा में, आत्माओं को संदेश देने में हमको वो रुचि और वो आकर्षण नहीं होगा जितना हमको व्यर्थ चर्चा और व्यर्थ बातें और बाहरी वातावरण में ज्यादा प्रभाव अपनी तरफ खींचेगा। तो ये हमको विशेष अटेंशन रखना है कि वाणी के द्वारा हमें अपनी वाचा को जितना हो सके उतना ही कम प्रयोग में लाना है, और वाणी के द्वारा हमें अगर चर्चा करनी है, हमें सुनाना है या बोलना है, तो बाबा की बातें, बाबा का संदेश, बाबा के कार्य अर्थ ही हमको अनेकों के सन्मुख आकर उनसे बोल चाल में हमें बाबा का परिचय देकर उन्हें बाबा से जोड़ना है, बाबा के समीप लाना है। तीसरा, हमें कर्मणा के द्वारा सारे दिन की दिनचर्या के अंदर विशेष ये अटेंशन रखना है कि हम जो दैवी परिवार के संगठन में या ईश्वरीय परिवार के साथ में आए हैं, तो हमारा जो साथ है, हमारा जो कर्म है, वो उनको ऐसी प्रेरणा दे जो उनके मन में भी योग करने की, योगी बनने की, सेवा करने की, त्याग करने की, तपस्या करने की भावना जागृत हो। माना हमारा जो जीवन है वो औरों के लिए कैसा बन जाए, कर्मणा के द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देने वाला जीवन बन जाए। जैसे हमारे बाबा ने प्रैक्टिकल रूप में बच्चों को क्या किया, करके सिखाया, दिखाया भी और करके सिखाया भी। हम सभी बाबा के जीवन इतिहास को पढ़ते हैं, हमारी आदरणीय दादियों के द्वारा हम सभी बाबा के जीवन के अनुभवों, अनुभवी पहलुओं को भी सुनते हैं और कितना गदगद हो जाते हैं कि बाबा ने कितना युक्ति से बच्चों को आगे बढ़ाया, कितना युक्ति से बच्चों को सिखाया। हम कितना दादियों के मुख से सुनते हैं कि बाबा बच्चों से सेवा भी कराता था तो बाबा पहले खुद करता था, बाबा खुद करके सिखाता था। यज्ञ में कभी भी, जब यज्ञ बहुत छोटा था और भंडारे का कार्य होता था, तो बाबा क्या कहता, बाबा गेहूं बीनेगा, बाबा खुद पहले जाके बैठता था। जब बच्चे देखते थे बाबा बैठा है तो सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे और सारे बच्चे इस कार्य में क्या बन जाते थे, मददगार बन जाते थे। और बाबा देखता था कि हाँ बच्चे देखो कितने तल्लीन हो गए इस सेवा में, इस कार्य में। और बाबा बीच बीच में बच्चों को बड़े प्यार से पालना देता था और बाबा बच्चों को बड़ी युक्ति से अपने जीवन की उन कमी कमजोरियों को निकालने के लिए प्रेरित कर देता था कि बच्चे जैसे गेहूं में से आप कंकड़ बीनकर अलग रख रहे हो, फेंक रहे हो ना, ऐसे ही अपने जीवन में से क्या करना, कोई ना कोई अवगुण है, कंकड़ है, बुराई है, दुर्गुण है, कमी है, कमजोरी है, इसको भी जीवन से निकालकर फेंकते जाना। छोटे छोटे उदाहरणों से बाबा ने बच्चों को कितना सिखाया और कितना बच्चों को आगे बढ़ाया। चाहे साकार में बाबा रहे, चाहे हमारी प्यारी मम्मा रही, चाहे हमारी दादियां रही, लेकिन दादियां आज भी हमको क्या दे रही हैं, आज भी हमको वो प्रेरणा दे रही हैं। दादियों का किसी भी स्थान से गुजर जाना, निकल जाना आपको क्या प्रेरणा देता है, जैसे फरिश्ता निकल गया यहाँ से, लगता है ना। दादियां बैठती तो क्या लगता, पूरे सभा में क्या लगता है, जैसे ये दादियां नहीं बैठी बल्कि कोई प्रकाश पुंज बैठा हुआ है, जैसे कि ये प्रेरणा स्रोत हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये हमको प्रेरणा दे रहे हैं, हर प्रकार से तपस्या के लिए प्रेरित कर रहे हैं, हमें हर प्रकार के दुनिया के सुख साधनों, ऐशो आराम के जीवन से और अनेक प्रकार के आकर्षणों से जैसे मुक्त होने की, सादगी युक्त जीवन जीने की हमको क्या दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। तो ऐसी प्रेरणाएं हम सभी अपने जीवन के अंदर प्राप्त करते रहें और उन्हें संजोते जाएं। इन प्रेरणाओं को हम संजोएं, जीवन के इन अनुभवों को हम ले करके और अपने जीवन को इतना अनुभवी बना लें, जो कल हमारे सामने वो समस्या आए तो हम समस्या में हिले नहीं, डगमग नहीं हो, बल्कि उनके जीवन में आई हुई वो समस्या और उसको पार करने का तरीका हमारे लिए क्या बन जाए, हमारे लिए प्रेरणा स्वरूप बन जाए और वो हमारे जीवन की समस्या को भी क्या कर दे, दूर कर दे, हमारे जीवन की समस्या को भी हटा दे, हमारे जीवन के कारणों को समाप्त कर दे, हमारे जीवन की अनेक प्रकार की कमजोरियों से हमें मुक्त कर दे। तो ऐसा हमारा दृढ़ संकल्प होगा तो निश्चित ही हमारा ये ब्राह्मण जीवन और हमारा ये ब्राह्मण परिवार अनेकों के लिए क्या बन जाएगा, एक लाइट हाउस स्वरूप बन जाएगा। हमारे बाबा के ये स्थान, जहां जहां से भी हम आए हैं, तो बाबा कहता है ये स्थान आपके क्या बन जाए, ये स्थान आपके शांति कुंड बन जाए। आपके उन स्थानों पर आत्माएं आए तो क्या अनुभव करके जाएं, शांति की अनुभूति करके जाएं, शक्ति की अनुभूति करके जाएं, जीवन परिवर्तन का संकल्प लेकर के जाएं, जीवन में खुशी भर करके जाएं, जीवन के अंदर श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा लेकर के जाएं और घर गृहस्थ में रहकर परिवार में रहकर के खुशनुमा जीवन कैसे जिया जाता है, किस प्रकार से घर परिवार में रहकर अपने घर परिवार को भी सुख शांतिमय तरीके से चलाने का एक लक्ष्य लेकर तरीका लेकर के आपसे जाए। यही है हम बच्चों के द्वारा वर्तमान समय की सेवा, और यह सेवा हर आत्मा कर सकती है। जरूरी नहीं है कि उसके लिए हम सब कुछ छोड़ दें, बहनों की तरह बन जाएं, तभी हम ये सेवा कर सकते हैं। नहीं, बाबा कहता मेरा हर एक बच्चा जहां भी बैठा हुआ है वो प्रेरणा स्वरूप है। बाबा हर बच्चे के घर में चक्र लगाता है, सेवा केंद्रों पर भी चक्र लगाता है, और बाबा ने एक मुरली में कहा कि मैं हर बच्चे के घर में भी चक्कर लगाता हूं। आपको पता ही नहीं पड़ता होगा, बाबा रोज चक्कर लगा करके जाता है, बाबा देख करके भी जाता है आप क्या कर रहे हो, कैसे चल रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कैसे चल रहे हो, बाबा साथ है कि नहीं है, हर कर्म बाबा की याद में कर रहे हैं कि नहीं है। बाबा ये सभी कुछ रोज चेक करता है, देखता है। इसलिए हम सदैव अपनी बुद्धि में रखें कि बाबा मेरे साथ हैं, मैं बाबा से अलग नहीं हूं और बाबा मुझसे अलग नहीं है। हर सेकंड मैं बाबा के साथ हूं, हर सेकंड बाबा मेरे साथ है। तो केवल गीत ही नहीं है लेकिन गीत के हम अनुभवी हैं। जब साथ है तो हर क्रिया में बाबा साथ है, जो भी सेवा कर रहे हैं सेवा में भी बाबा साथ है। चाहे आप किसी को ज्ञान सुनाने की सेवा कर रहे हैं, चाहे आप यज्ञ की स्थूल सेवा कर रहे हैं, चाहे आप भोजन बना रहे हैं, चाहे आप सब्जी काट रहे हैं, चाहे आप यात्रा भोजन में हैं, चाहे आप सोलार में ड्यूटी दे रहे हैं, चाहे लिटरेचर काउंटर पर है, कहीं कोई भी सेवा कर रहे हैं आप, लेकिन यहाँ क्या अनुभव होता है, बाबा हमारे साथ है और बाबा की सेवा में उपस्थित है। ऐसे ये भाव, ये अटूट अनुभव, विग्री दिली हम इतना भर करके जाए, इतना भरपूर हो करके जाए, जो वहां जाकर के हम क्या रहे, भरपूर रहे। खाली ना हो, इतना भरपूर होकर जाओ जो वहां जाकर सबको भरपूर कर सको, जो बाबा भी कहे वाह मेरे सपूत बच्चे वाह, वाह मेरे आज्ञाकारी बच्चे वाह, वाह मेरे सेवाधारी बच्चे वाह। तो ऐसे बच्चों की बाबा भी रोज वाह वाह करता है और हम बच्चे भी कहते हैं वाह मेरा प्यारा बाबा वाह, वाह मेरा मीठा ड्रामा वाह, और वाह मेरा प्यारा जीवन वाह। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति।